हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तमाशा खत्म होने के बाद सब लोग माधवी के कमरे से बाहर आ गए। आज सच में माधवी का सिर्फ मजाक बनकर रह गया था, क्योंकि किसी ने भी उसकी साइड नहीं ली थी। ऊपर से सबको ये बहुत ही बचकानी हरकत लग रही थी। रूहान और अनाही के कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। रूहान को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत देर तक नींद नहीं आने वाली है। अनाही हाथ में दो कॉफ़ी कप लिए तेज़ कदमों से कमरे के अंदर आई। रूहान, जो कब से बस उसी का इंतज़ार कर रहा था, उसने हल्के गुस्से में कहा, आप कहाँ चली गई थीं और इतनी रात को कौन कॉफ़ी बनाकर लाता है? हमने थोड़ी देर पहले तो डिनर किया था। अनाही को समझ नहीं आया कि इसमें गुस्से वाली क्या बात है, लेकिन फिर भी वो उसके पास बैठकर उसके हाथ में एक कॉफ़ी कप देते हुए बोली, मुझे पता है, जब आप टेंशन में होते हो तब कॉफ़ी पीने से आपको रिलैक्स फील होता है। मैं बस इसीलिए आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाई थी। मुझे पता है, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें आप ताई जी की साइड लेना चाहते थे, लेकिन आज वो इस कदर गलत थी कि आप चाहकर भी उनकी साइड नहीं ले पाए। रूहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं उनकी साइड लेना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वो मेरी तरह अकेला महसूस करें। जब सब लोग खिलाफ हो जाते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है, और उस वक्त वो मेरे साथ थीं, तो आज मुझे बुरा लगा कि मैं चाहकर भी उनका साथ नहीं दे पाया। रूहान अभी भी ठीक उसी गुस्से में बोल रहा था। अनाही ने आकर चोटी करते हुए कहा, तो आप इस बात का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? अब रूहान उसे कैसे बताए कि उसे खुद नहीं पता उसे गुस्सा आ ही क्यों रहा है। उसने कॉफ़ी का एक घूंट भरते हुए कहा, नहीं, मैं आप पर गुस्सा नहीं उतार रहा हूँ। इतना बोलकर वो बेड से उठा और फिर बालकनी में जाकर कॉफ़ी पीने लगा। अनाही बस उसे देखते रह गई। उसने खुद में ही फुसफुसाते हुए कहा, अब इन्हें क्या हो गया है? थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक ही था। वो भी बेड से उठी और फिर तेज़ कदमों से बालकनी में जाकर रूहान के पास खड़े होते हुए बोली, आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इससे अच्छा है आप किसी और टॉपिक पर बात कर लो। रूहान ने एक नज़र अनाही को देखा और फिर अपना खाली कॉफ़ी मग वहाँ टेबल पर रखते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। अनाही को उसकी ये इग्नोरेंस पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रूहान के सामने काफ़ी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। उसके पास जाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ है? अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ऐसे इग्नोर करने से कुछ नहीं होने वाला है। रूहान ने आंखें उठाकर अनाही की तरफ देखा और अगले ही पल उसके गले लगाते हुए बोला, मैंने आज पहली बार ताई जी पर गुस्सा किया है, लेकिन क्यों मुझे पता नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं ये जानने में कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी भी मैं आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे घुटन हो रही है हर बात से। ऐसे लग रहा है कि सब लोग बस मुझे हर्ट करना चाहते हैं। विहा की दी गई सीख आज काम कर रही थी। विहा ने रूहान से कहा था कि उसके दिलो दिमाग में जो भी ख्याल आए वो सीधा अनाही से बोल दे, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो क्लियर हो जाए, और आज रूहान वही कर रहा था। अनाही रूहान के ऐसे एकदम से गले लगाने से थोड़ा हैरान हो गई, और फिर उसकी बातें सुनकर उसने एक गहरी सांस लेकर रूहान के बालों में अपनी नम उंगलियाँ घुमाते हुए कहा, अच्छा, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभार ऐसे। जब हम कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड फील करते हैं तब ऐसे चिड़चिड़ा हो जाना नॉर्मल है। रूहान ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ, अभी आप जब कमरे में नहीं थीं तब मुझे लग रहा था कि जब मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है आप मुझे अकेला छोड़कर चली गईं, जबकि आप तो मेरे ही बारे में सोच रही थीं। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने आप ही हो रहा है। अनाही ने भी अपनी आँखें बंद करते हुए रूहान को और भी ज़्यादा कसकर गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं है, अभी बहुत रात हो गई है, आप सो जाओ, शायद सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए। अनाही की ये बात रूहान को ठीक लगी और वो दोनों कमरे में जाकर सो गए। सोने के बाद भी रूहान को नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन अनाही के पास होने से उसे सुरक्षित ज़रूर महसूस हो रहा था, इसलिए उसका दिल अब उतना ज़्यादा नहीं घबरा रहा था जितना कुछ देर पहले घबरा रहा था। वो अनाही का हाथ अपने हाथ में लिए उसके चेहरे को देख रहा था। अनाही की आँखें बंद थीं क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए उसे तो सोते ही नींद भी आ गई थी। रूहान शिद्दत से उसके प्यारे से चेहरे को देख रहा था। कहीं दूसरी तरफ वेदांत के कमरे में विहा अभी भी गुस्से में इधर उधर घूम रही थी, और वेदांत बेड पर बैठा बस उसे देख रहा था। देखने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जब कुछ देर बाद भी विहा का टहलना बंद नहीं हुआ तो वेदांत बेड से उठा और फिर विहा के पास जाकर एक झटके से उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, टमेटो, तुम्हें क्या हो गया है? माना ताई जी ने जो किया वो अच्छा नहीं था, लेकिन अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। सबने तुम्हारा साथ दिया है और तुमने जी भर के मुझे सबके सामने शर्मसार भी कर दिया। अब और क्या चाहिए तुम्हें?
विहा ने उसकी बाहों में झटपटाते हुए कहा, अगर मैंने आपको इतना ही ज्यादा शर्मसार कर दिया है तो अब मुझे प्यार से ट्रीट मत करें। आप भी मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, जब मुझे बुरा लगता है तब, जैसे मैं आप पर गुस्सा करती हूँ। अब छोड़िए मुझे, मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं है। वेदांत ने उसे बेड पर लेटाया और फिर जबरदस्ती उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लेकर एक हाथ से उसकी कमर पकड़ते हुए उसके छोटे से चेहरे को देखकर बोला, टोमेटो, मुझे ऑलरेडी पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं, और मुझे ये भी पता है कब तुम पर गुस्सा करना है और कब तुमसे प्यार करना है। तुम्हें मुझे ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तुम अपने छोटे से दिमाग को चलाना बंद करो, क्योंकि मुझे तुमसे कल फिर बहाना नहीं चाहिए कि मैं रात को लेट से सोई थी तो आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा। विहा को समझ नहीं आ रहा था, इतना सब कुछ होने के बावजूद वेदांत के दिमाग में सिर्फ कॉलेज ही क्यों घूम रहा है? क्या उसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी है और घर के मैटर से भी ज़्यादा ज़रूरी है? उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, आप तो हाथ धोकर मेरे कॉलेज के पीछे पड़ गए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। उसकी बात सुनकर वेदांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाथ धोकर नहीं टोमेटो, मैं पूरा नहाकर तुम्हारे कॉलेज के पीछे पड़ गया हूँ। अब तो मैंने इसके लिए अपने काम को भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, तो अब तुम चाहकर भी मुझे मना नहीं कर सकती हो और कोई बहाना नहीं मार सकती हो। विहा बार बार पलके झपकाते हुए उसे देख रही थी। वेदांत ने जब देखा कि अब विहा का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका है तो उसने धीरे से उसके हाथों को छोड़ दिया और फिर उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए अंगूठे से उसके गाल को सहलाकर बोला, घर की प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी टोमेटो, इन सब की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और खासकर तुम्हारा मूड नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि साल के 365 दिन ये सब कुछ चलता रहेगा और जब तक ताईजी जैसे इंसान हमारी जिंदगी में है तब तक तो इम्पॉसिबल है कि किसी दिन तुम बिन झगड़ा किए इस घर में रह पाओगे। तो क्या तुम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दोगी और हर वक्त बस इन्हीं के बारे में सोचोगी?
वेहा पूरी कोशिश कर रही थी कि वो वेदांत की बातों को समझ पाए और उसका ये सीरियस चेहरा वेदांत को हद से ज्यादा प्यारा लग रहा था। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने गहरी सांस लेकर आहिस्ता से वेहा के होठों पर अपने होठ रख दिए और फिर उसे धीरे धीरे किस करने लगा। वेहा जो इन सब के लिए तैयार नहीं थी वो एकदम से ही हड़बड़ा गई, लेकिन वेदांत की पकड़ उस पर इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। वहीं वेदांत बेपरवाह होकर उसके होठों को चूम रहा था जैसे उसके लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम ना हो। थोड़ी देर बाद जब वेहा किस से उखड़ने लगी तो वेदांत ने धीरे से उसके होठों को छोड़ दिया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। वेहा ने भी गहरी सांस ली और फिर वेदांत के सीने में अपना सिर छुपाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि शर्म के मारे उसका चेहरा पके हुए टमाटर जैसा हो गया था और वो अपना ये चेहरा वेदांत को नहीं दिखाना चाहती थी। वेदांत ने भी आंखें बंद करते हुए वेहा के बालों में अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी से सो जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ देर बाद ही वेदांत को वेहा की गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिन्हें महसूस कर वेदांत के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने फिर से वेहा के सर को चूमते हुए कहा, पागल लड़की।